जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य चरितमृत 9th chapter text number 359 in a moment we will chant
श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 9 श्लोक संख्या 359
अनंत चैतन्य लीला कहते न जाने लोभे लाजा कनातारा करे तनतानी Translation: The pastimes of Lord Chaitanya are unlimited. No one can properly describe his activities. Yet I make the attempt out of greed.
Shri Chaitanya.
This part reveals my shamelessness.
Shri Chaitanya Mahaprabhu ki leelaen anant hain. Unke karyakalapon ka koi theek se varnan nahi kar sakta. फिर भी लोभवश मैंने चेष्टा की है इससे मेरी निर्लज्जता ही प्रकट होती है
सो दिस इज कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पीकिंग हियर
यहां पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं
ही इज द कंपाइलर ऑफ चैतन्य चरितमृत
ये चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं।
Where is the sound man? He would deny that he is the author.
और ये वो कह रहे हैं कि उन
Tell him to get it together. This is ridiculous. Tell him in Hindi. Get it together. Hindi, please. Talk. It's very disturbing, very disturbing. It breaks the train of thought, it breaks the mood. So, Krishnadas Kaviraj Goswami, we say he is the author.
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो वास्तविकता में रचयिता नहीं है
He would deny it.
वो इसको इनकार कर रहे हैं
The reason being that he knows that he was channeling it, so to speak, that the Supreme Personality of Godhead, Mahaprabhu, was empowering him to write. He would not take the credit. In fact, he doesn't take the credit.
वो ये बताना चाहते हैं वो केवल एक माध्यम है चैतन्य महाप्रभु जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनको आवेश प्रदान कर रहे हैं शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिसके द्वारा वो ये दिव्य ग्रंथ की रचना कर पा रहे हैं
He begins his narration of Chaitanya Charitamrita by declaring how fit he is, unfit he is for such a high task.
जो चैतन्य चरितामृत का प्रारंभ करते हैं तो वो ये लिखते हैं कि वो कितने अयोग्य हैं इस उच्च कार्य को करने के लिए
It's interesting, he says, no one can describe the pastimes of Mahaprabhu, but I'm going to do so, I'm going to attempt out of greed.
तो बहुत ही रुचिकर रूप से कह रहे हैं कि यद्यपि कोई भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता लेकिन मेरे को ये लोभ है इसलिए मैं इसका प्रयास करूंगा
Of course, it's not mundane greed.
निश्चित रूप से ये भौतिक लोभ नहीं है
It's called lalyam lalasmayi.
इसे लौल्यम लालसामयी कहा जाता है
Lalyam lalasmayi means intense greed.
Lalyam lalasmayi ka arth hai bahut hi tivra lobh.
He is talking as if it's
ऐसा लगता है कि वो भौतिक है.
Which speaker is feeding back? I can't see. That one? Turn it this way. Turn it away from the mic. Away from the mic. That's what causes feedback. More. When the mic picks up on the when a speaker, that causes a screeching sound. Translate.
जब माइक और स्पीकर सामने सामने होते हैं
तो novel idea.
जब माइक और स्पीकर सामने सामने होते हैं तो छोटी सी नॉइस भी बहुत एम्पलीफाई हो जाती है.
This concept of empowerment is very important.
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है.
Srila Prabhupada also said, I am not the author of these books, Krishna is.
Srila Prabhupada ji bhi ye batate the ki main in kitabon ka lekhak nahi hu. Swayam Bhagwan Shri Krishna iske lekhak hain.
So the great souls are empowered to record these very high scriptures.
Mahan atmaon ko ye shakti pradan ki jati hai ki wo in mahan granthon ka sankalan kar saken.
Just like Srila Vyasadeva is not the author of the Vedas.
जिस प्रकार से श्रील व्यासदेव वेदों के रचयिता नहीं हैं.
Vedas came from the mouth of Lord Brahma.
वेद भगवान ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं.
So how could Vyasadeva be the author?
तो कैसे व्यासदेव इसके रचयिता हो सकते हैं?
He also received that knowledge through Guru Parampara.
उन्होंने भी ये ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया था.
So who is the guru of Srila Vyasadeva?
तो व्यासदेव जी के गुरु कौन हैं?
Yes. Yes, Narada Muni.
हरि बोल.
So Narada Muni is the original Parivrajakacharya.
नारद मुनि सबसे पहले परिव्राज का आचार्य हैं.
Parivrajakacharya means everywhere and anywhere. Prabhupada, our line is primarily starting with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. That's why we say Jom Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya. Everywhere and anywhere, Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
Parivrajakacharya ka arth hai ki kahin bhi aur har jagah. To Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada aur Srila Prabhupada प्रचार के लिए कहीं भी और हर जगह जाते थे.
But the original is Narada Muni.
पर जो आदि परिव्राज आचार्य हैं वे नारद
मुनि. So our disciplic succession is going way back to the beginning of creation.
तो जो हमारा गुरु शिष्य परंपरा है वो सृष्टि की शुरुआत तक जारी है.
It's essential that you understand that the Hare Krishna movement is not something new.
ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हरे कृष्णा आंदोलन कोई नई चीज नहीं है.
You understand, sir?
क्या आप समझ
पाए? This man with the gray shirt. You understand? Very good.
बहुत बढ़िया.
Because foolish people in the public, they think the Hare Krishna movement is something new. It's the oldest religion in the universe, but they don't know that.
मूर्ख लोग कहते हैं कि हरे कृष्णा आंदोलन बहुत नया है, लेकिन ये सबसे पुरातन है और इससे पुराना धर्म नहीं है.
But Krishna discovers Goswami repeatedly reveals his humility in the way he writes about himself.
श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार अपनी विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं जब भी वो अपने विषय में लिखते हैं.
He says, I'm attempting to describe the activities of Chaitanya Mahaprabhu.
वे कह रहे हैं मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने का चेष्टा कर रहा हूँ.
This but reveals my shamelessness.
और इससे मेरी निर्लज्जता ही प्रकट होती है.
Oh, this is not false rhetoric.
ये कोई मिथ्या चीज नहीं है.
Not mere flowery words.
केवल बोलने के लिए बोल दिया, ऐसा नहीं है.
His heartfelt feeling of genuine humility. If you want to know what is genuine humility, here we see it in the writing of Krishna Shkavaraj Goswami.
ये वो हृदय से बोल रहे हैं, अपने हृदय की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, और हमें वास्तविकता में अगर जेन्युइन विनम्रता सीखनी है तो हम कृष्णदास कविराज जी से सीख सकते हैं.
टेक्स्ट 360
पयार संख्या.
प्रभुर तीर्थ यच कत सुने ये जना, प्रभुर तीर्थ यच कत सुने ये जना,
प्रभुर तीर्थ यात्रा कथा सुने ये जना,
चैतन्य चरणे पय गढ़ प्रेम धना,
चैतन्य चरणे पय गढ़ प्रेम धना,
प्रभुर तीर्थ यच कतो सुने ये जना,
प्रभुर तीर्थ यात्रा कथा सुने ये जना,
चैतन्य चरणे पय गढ़ प्रेम धना,
चैतन्य चरणे पय गढ़ प्रेम धना,
प्रभुर तीर्थ यच कथा सुने ये जना,
प्रभुर तीर्थ यात्रा कथा सुने ये जना,
चैतन्य चरणे पय गढ़ प्रेम धना,
चैतन्य चरणे पय गढ़ प्रेम धना,
प्रभुर तीर्थ यच कथा सुने ये जना,
प्रभुर तीर्थ यात्रा कथा सुने जना,
चैतन्य चरणे पय गढ़ प्रेम धना,
चैतन्य चरणे पय गढ़ प्रेम धना.
नेक्स्ट कीप गोइंग. Come on, no pause. Tell him no pause. No pause.
Chaitanya Charane Pai Gaadha Prema Dhana.
Tell him loudly.
Prabhurdita Yatra Katha Shunei Jana. चैतन्य चरण पाए गाढ़ प्रेम धना, प्रभु तीर्थ यात्रा कथा सुने जना,
next. Vaishnavis. Vaishnavis.
Mata hai.
They have to chant loud. Tell them to chant loud.
Jor se.
Nobody chanting. Translation. Hare Krishna. Whoever hears of Sri Chaitanya Mahaprabhu's pilgrimage to various holy places attains the riches of very deep ecstatic love.
अनुवाद जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के विषय में सुनता है वह प्रगाढ़ प्रेम भाव रूपी धन को प्राप्त करता है.
So some of you have heard earlier of the descriptions of his travels.
तो आप में से कुछ भक्तों ने पहले भी कक्षाओं में चैतन्य महाप्रभु की यात्राओं के बारे में सुना होगा.
Not all of you were here for that description.
निश्चित रूप से सभी भक्तों ने तो नहीं सुना होगा.
Means that you should read Chaitanya Charitamrita yourself if you didn't hear it in class here.
इसका अर्थ यह है कि आपको स्वयं चैतन्य चरितामृत पढ़नी होगी अगर आपने यहाँ पे कोई कक्षा नहीं अटेंड की.
That's a heavy benediction. Whoever hears Sri Chaitanya Mahaprabhu's pilgrimage to various holy places attains the riches of very deep ecstatic love.
बहुत महान आशीर्वाद दिया जा रहा है कि जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ स्थानों की यात्रा के विषय में सुनता है उसे प्रगाढ़ प्रेम भाव रूपी धन प्राप्त होगा.
Of course, that will take some time.
निश्चित रूप से इसमें कुछ समय भी लगेगा.
For most of us, it will be after we leave this body and Prabhupada and his eternal associates come to take us.
हम सब सबके लिए मुख्यतः जब हम शरीर का त्याग करेंगे और प्रभुपाद और उनके नित्य सेवक हमको लेने आएंगे.
I don't think anyone present here is on the platform of Baba.
मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो भी उपस्थित भक्त हैं उनमें से कोई भी भाव की स्थिति में है.
So first we have to come to the platform of Baba. We can't jump from a neophyte situation. We can't jump to prem. It's not possible.
सबसे पहले हमको भाव की स्थिति में आना होगा. कनिष्ठ भक्त की स्थिति से हम एकदम प्रेम की स्थिति में छलांग नहीं लगा सकते.
Of course, it's possible if some great saint, you know, gives you super benediction. It's possible. Otherwise, on our own endeavor, not possible.
निश्चित रूप से यह संभव है अगर कोई महान भक्त आपको आशीर्वाद दे तो, नहीं तो अपने प्रयासों से यह संभव नहीं है.
So Prila Prabhupada has written a very long purport here.
यहाँ प्रभुपाद जी ने इसका बहुत ही विस्तार से तात्पर्य दिया है.
Srila Bhaktisiddhanta Swami Thakur remarks, the impersonalists imagine some forms of the absolute truth through the direct perception of their senses.
श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है, निर्विशेषवादी अपनी इंद्रियों की प्रत्यक्ष अनुभूति से परम सत्य के किसी रूप की कल्पना करते हैं.
The impersonalists worship such imaginary forms, but neither Srimad Bhagavatam nor Chaitanya Charitamrita accept the sense gravatory worship to be of any spiritual significance.
वे इन काल्पनिक रूपों की पूजा करते हैं किंतु ना तो श्रीमद भागवत ना ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की इंद्र तृप्ति की पूजा को किसी प्रकार से आध्यात्मिक महत्व देते हैं.
However, Sri Chaitanya Mahaprabhu confirms the conclusion of Srimad Bhagavatam on the strength of his philosophy of Achintya Vedaveda Tattva.
मायावादी अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं. वे मानते हैं कि पर ब्रह्म का कोई व्यक्तिगत रूप नहीं होता और उनके सारे स्वरूप माया जाल या आकाश पुष्प के समान काल्पनिक होते हैं. मायावादी लोग तथा ईश्वर के रूपों की कल्पना करने वाले दोनों ही भ्रमित हैं.
That philosophy holds that the Supreme Lord is simultaneously one and different from his.
उनके अनुसार अर्चा विग्रह की या भगवान की किसी भी स्वरूप की पूजा बद्ध जीव के भ्रम का परिणाम है किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन के आधार पर श्रीमद् भागवत के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं. इस दर्शन के अनुसार भगवान अपनी सृष्टि से एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है.
So he is one with the creation and different also.
तो वो सृष्टि के साथ एक हैं भी और अलग भी हैं.
Prabhupada says, that is to say, there is unity and diversity.
इसका अर्थ है प्रभुपाद कहते हैं कि विविधताओं में एकता.
So, this Achintavaita Devatattva is very important that every devotee understand. It is the root core in our philosophy.
अचिंत्य भेद अभेद तत्व दर्शन हर भक्त के लिए बहुत आवश्यक है समझना. वे हम ये हमारे सिद्धांत का मूलभूत.
We do not deny oneness with God.
हम इस चीज की खंडन नहीं करते.
But we will never accept that Jiva is one in a, that we are all Brahman, there is no variety. We will never accept that. It's not the teachings of Mahaprabhu.
हम इस चीज का खंडन नहीं करते कि जीव भगवान से गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन हम इस चीज को निश्चित रूप से नहीं मानते कि जो जीव है वही और भगवान सब एक ही ब्रह्म है और कोई विविधता नहीं है.
Try to understand that Achintavaita Vedatattva is unique to Gaudiya Vaishnavas.
इसका समझने का प्रयास कीजिए कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का एक.
You will not find it in the other three sampradayas of Vaishnavas. They are Vaishnavas, no doubt, but you will not find Achintavaita Vedatattva anywhere outside of Mahaprabhu's line.
ये केवल गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में ही उपलब्ध है. बाकी तीन वैष्णव संप्रदायों में यद्यपि वे वैष्णव हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व प्राप्त नहीं किया जाएगा.
But he is the Supreme Personality of Godhead and he can rewrite all the scripture and all the philosophy he wants to.
चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है और वे चाहे तो पूरा का पूरा वैदिक शास्त्र दोबारा से लिख सकते हैं, पूरा दर्शन दोबारा से नया दे सकते हैं.
But when Chaitanya Mahaprabhu declares Achintavaita Vedatattva, he is also drawing on all the shastras. He didn't manufacture or make it up. Because he's Acharya, he's playing the role of Acharya. So he takes from prior Shastra, prior Acharyas.
परंतु जब चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद तत्व का बताते हैं तो वो कुछ नया नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो आचार्य की भूमिका निभाते हैं. वो पिछले शास्त्रों में से ही इस सिद्धांत को उदित कर रहे हैं.
So Prabhupada therefore says, Sri Chaitanya Mahaprabhu confirms the conclusion of Srimad Bhagavatam on the strength of his philosophy of Achintavaita Vedatattva.
So Prabhupada keh rahe hain ki Sri Chaitanya Mahaprabhu apne Achintya Vedabhed Tattva Darshan ke aadhar par Srimad Bhagavat ke nishkarsh ki pushti karte hain.
So to set example, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally visited temples in various holy places.
तो उदाहरण उपस्थित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से अलग अलग तीर्थ स्थानों में मंदिरों में जाते हैं.
Wherever he visited, he immediately exhibited his ecstatic love for the Supreme Personality of Godhead.
जहां पे भी वे गए वहां पर उन्होंने तुरंत अपना भावावेश भगवान के प्रति प्रेम प्रकट किया.
When a Vaishnava visits a temple of a demigod, his vision of that demigod is different from the vision of the impersonalists and Mayavadis.
जब कोई वैष्णव देवी देवताओं के मंदिरों को देखने के लिए जाते हैं तो उनकी दृष्टि मायावादियों की दृष्टि से अलग है होती है.
The Brahma Samhita supports this.
इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता द्वारा होती है.
A Vaishnava's visit to the temple of Lord Shiva, for example, is different from the non-devotee's visit.
उदाहरण के तौर पर शिव मंदिर में वैष्णव का जाना अभक्त के जाने से भिन्न होता है.
The non-devotee considers the deity of Lord Shiva as imaginary form because he ultimately thinks the Supreme Absolute Truth is void.
अभक्त शिवजी के विग्रह को काल्पनिक मानता है क्योंकि वह यही सोचता है कि आखिर परम सत्य तो शून्य है.
However, a Vaishnava sees the Lord Shiva as being simultaneously one with and different from the Supreme Lord.
किंतु वैष्णव शिवजी को एक साथ भगवान से अभिन्न तथा भिन्न करके देखता है.
Your average Hindu doesn't understand this point at all.
तो इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है.
They only take the oneness. They believe, the average Hindu believes that Lord Shiva is exactly the same as Lord Vishnu.
बाहर के लोग केवल अभिन्नता को स्वीकार करते हैं कि शिवजी और विष्णु एक हैं.
But here we see that Mahaprabhu is denying such things.
परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि भिन्न भी हैं.
So they accept, the average Hindu accepts that oneness of Lord Vishnu or Krishna and Shiva.
तो साधारण हिंदू जन भगवान शिव और विष्णु भगवान की एकता को.
But they reject the idea of different also. They reject that.
वो एकीकार को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भिन्नता को त्याग देते हैं.
If you ever hear some Hindu priest say that Bhagwan or Shri Krishna, Bhagwan Vishnu are the same as Lord Shiva.
हमने एक हिंदू पुजारी को कहते हुए सुना है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव सब एक हैं।
You will see that's what Krishnadas Kaviraj Goswami called half a hen philosophy.
इसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अर्ध कुकुटीर न्याय बताते हैं।
There's a story about some foolish farmer who had a goose that laid a golden egg. Mythology.
तो एक बहुत रोचक कथा है कि एक बार एक फार्मर होता है जिसके पास मुर्गियां होती हैं।
He was greedy, so he thought, why should I feed this goose? Let me just get the gold producing department.
तो होता क्या है कि वो सोचता है कि मैं इन मुर्गियों को खिलाता हूँ, पर मुझे तो अंडे चाहिए।
So he cut off the front of the goose.
तो वो कहता है कि जो आगे का हिस्सा है उसमें खर्चा होता है, पीछे के हिस्से से माल मिलता है, तो आगे वाले को काट दो।
He was so foolish, he thought the rest of the body of the goose would continue producing golden eggs.
तो जब वो इतना मूर्ख था कि उसने समझा नहीं कि आगे वाला हिस्सा काट देंगे तो जो सोने के अंडे थे तो मुर्गी मर जाएगी, वो भी नहीं आएंगे।
This is the wrong kind of greed. This is mundane greed. Is very damaging. Mundane greed is laced with tamagun and rajagun.
तो ये भौतिक लोभ है। तो ये जो है इससे विनाश होता है। इससे रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है।
Of course, when a stupid farmer cut the head off the goose, of course the goose died. No more golden eggs, but he was too stupid to figure out that that was what was going to happen. See, this is half a hen philosophy in this case.
तो निश्चित रूप से जब वो मूर्ख किसान ने मुर्गी का आगे का हिस्सा काट दिया, तो मुर्गी को तो फिर मरना ही था, लेकिन उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो इस चीज को पहले से ही देख ले।
So the half a hen philosophy is to accept the oneness and to reject the individuality of the atma.
तो जो अर्ध कुकुटीर न्याय है कि हम ये तो स्वीकार करेंगे जी कि भगवान और जीव एक है, लेकिन ये नहीं स्वीकार करेंगे कि वो साथ ही साथ अलग भी हैं और उनका व्यक्तिगत स्वरूप है।
That's why Gaudiya Vaishnav concept as taught by Chaitanya Mahaprabhu, Achintaveda Vedatava, is the highest conception actually.
इसीलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत वेदावे तत्व का प्रतिपादन किया है वो सबसे ऊंचा सिद्धांत है।
Simultaneously one and different also. Individuality is not extinguished, not wiped out by the oneness.
कि साथ ही साथ भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। जब जीव और भगवान की एकीकरण की बात होती है तो उसमें उनकी जो व्यक्तिगत स्वरूप है उसका वो चीज खत्म नहीं होती।
The Vaishnav never claims to be independent from God. We don't say the soul exists simultaneously, but some other outside of Gaudiya Vaishnav, they may say there's this eternal soul and there is the eternal personality of Godhead as if they were separate. You see, understand separate but connected through devotional service. But that not as accurate as Achinta Veda Veda Tattva.
So, vastavikta mein, jeev bhi shashwat hai aur Bhagwan bhi shashwat hai. और उनका जो संबंध है वो भक्तिमय सेवा से जुड़ा हुआ है, तो ये उनकी एकता है, तो और यही अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत है।
Therefore we accept that the teachings of Chaitanya Mahaprabhu are the most accurate and the highest of the varieties of Vaishnava conception.
इसीलिए हम ये स्वीकार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो वैष्णव सिद्धांतों में सबसे ऊंची और पराकाष्ठा पर स्थित हैं।
So to set an example, Chaitanya Mahaprabhu personally visited temples in various holy places.
तो उदाहरण स्थापित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अलग अलग तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हैं।
So just like on our Mayapur Parikram, the devotees go to temples of Devi and go to temples of Shiva also. We don't boycott, you know, boycott. We don't reject, but we in these temples of Devi and temples of Lord Shiva, Shivalinga, we offer obeisances opposite direction, or at least with a different side towards the deity.
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण उपस्थित किया और वे स्वयं अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों में भी गए। तो हम देखते हैं कि जब प्रतिवर्ष गौर पूर्णिमा उत्सव में मायापुर नवदीप मंडल परिक्रमा में भक्त लोग जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा स्थलियों में बहुत सारे देवी और भगवान शिव के मंदिर आते हैं, तो भक्त उनको नकारते नहीं है, वहां जाते हैं और अपने प्रणाम भी अर्पित करते हैं, लेकिन उल्टी दिशा में।
Even in Yogapit, the very place where Chaitanya Mahaprabhu appeared, there is a Shiva Linga, and when the devotees are on pilgrimage, they are told by our ISKCON acharyas to offer all Dhanavat pranams to that Shiva Linga. So it's not outside of Mahaprabhu's teachings.
यहाँ तक कि सबसे प्रमुख स्थली योगपीठ, जहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है, जब भक्त परिक्रमा में वहां पर जाते हैं तो उस स्थान में भगवान शिव जी का एक शिवलिंग है, तो इस्कॉन के आचार्य भक्तों को कहते हैं कि वहां पर अपने दंडवत प्रणाम अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद लें। तो जो शिव जी हैं वो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों से या शिक्षाओं से बाहर नहीं है।
सो नेक्स्ट प्रॉपर गिव्स द एग्जांपल ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड लॉर्ड शिवा।
तो आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भगवान और शिवजी के संबंध का उदाहरण दे रहे हैं।
Again, अचिंत्य भेद अभेद तत्व।
ये भी अचिंत्य भेद अभेद तत्व सिद्धांत से ही है।
So Prabhupada gives the famous example of milk and dahi.
तो प्रभुपाद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दूध और दही।
Dahi means yogurt in English.
दही को अंग्रेजी में योगर्ट कहते हैं।
It's actually nothing but milk.
वो वास्तविकता में कुछ और नहीं है बल्कि दूध ही है।
But at the same time, it is not milk.
पर साथ ही साथ वो दूध नहीं भी है।
It is simultaneously one with milk yet different from it.
तो वो साथ ही साथ दूध है भी और नहीं भी।
This is the philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And it's confirmed by Lord Krishna in Bhagavad Gita 9.4.
Shri Chaitanya Mahaprabhu ka yahi darshan hai aur iski pushti Bhagwan Shri Krishna Bhagavad Gita ke 9th adhyay ke 4th shlok mein karte hain.
Please repeat after me. Maya tatam idam sarvam.
Maya tatam idam sarvam.
Jagad avyakta murtina.
Jagad avyakta murtina.
Matstani sarva bhutani.
Matstani sarva bhutani.
Nacham teshvavastitaha.
Nacham teshvavastitaha.
So Lord Krishna is saying in this verse, by me in my unmanifested form, this entire world is pervaded.
तो भगवान कृष्ण इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, वे कहते हैं ये सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से ओतप्रोत है।
All beings are in me, but I am not in them.
सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ।
And this is Krishna's way of saying that the living entities are not one in the sense of impersonalist.
और ये दूसरा तरीका है ये चीज कहने का कि सारे जीव भगवान से एक नहीं है जिस प्रकार से मायावादी सोचते हैं।
In other words, Bhagavan does not become jiva.
दूसरे शब्दों में भगवान कभी जीव नहीं बनते।
That's not possible.
ये संभव नहीं है।
Jivas can be empowered by the Supreme Lord, no doubt.
निश्चित रूप से जीवों को भगवान शक्ति प्रदत्त कर सकते हैं।
But that does not mean they have become fully the Supreme Personality of Godhead. Empowerment is a different concept.
इसका अर्थ ये नहीं होता लेकिन कि जीव पूर्ण रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान बन गए हैं। शक्ति प्रदान किया जाना, आवेश होना, ये पूर्ण रूप से अलग सिद्धांत है।
So, Prabhupada never allowed any disciples to say that he was God. Never.
तो श्रील प्रभुपाद जी ने कभी भी किसी शिष्य को इस बात की अनुमति नहीं दी कि वे उनको भगवान कहें।
At one time in the early history of the movement, a few leading disciples, Brahmananda, Gargamuni, Vishnujana was very prominent in those days. They declared that Prabhupada was God.
ISKCON की शुरुआत में कुछ प्रमुख शिष्यों ने प्रभुपाद जी को भगवान समझना शुरू कर दिया।
Prabhupada was furious when he heard this, absolutely furious.
लेकिन जब प्रभुपाद जी को इस विषय में पता चला तो प्रभुपाद बहुत क्रोधित थे, बहुत ज्यादा।
He said they had been contaminated from outside of ISKCON.
तो वो कह रहे थे कि वो पूरे के पूरे संस्था को दूषित कर रहे हैं।
Specifically, some of his god brothers wanted to discredit him.
विशेष रूप से कुछ श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई उनको
Somehow, Prabhupada's disciples got poisoned by that concept.
उनको डिस्क्रेडिट करना चाह रहे थे और इस वजह से उनके शिष्य उनके द्वारा विष प्राप्त हो गया।
So actually, Srila Prabhupada reacted so strongly. Those four men who were prominent disciples, he banished them from ISKCON for a while.
तो प्रभुपाद जी ने इतना strong action लिया कि जो चार मुख्य शिष्यों ने प्रभुपाद जी को भगवान बोलना शुरू कर दिया, उनको प्रभुपाद ने कुछ समय के लिए ISKCON से दखलंदाज कर दिया।
So after he cooled down, he allowed them to come back because they were rectified.
परंतु जब चीजें सही सेटल हो गया सब और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की तो फिर वापस उनको
The Christians ले गया। The Christians are totally confused on this point. They say Jesus is God. They have no conception of Advaita, none at all.
जो ईसाई हैं वो इस विषय में पूर्ण रूप से विस्मित हैं। वो कहते हैं कि जीसस भगवान है लेकिन वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व से पूर्ण रूप से विस्मित हैं।
Next to meat eating, this conception that Jesus is God is one of the things that spoils modern Christianity.
Meat eating के बाद जो दूसरी चीज है जो आज के Christianity को खराब कर रही है वो ये है कि जीसस को भगवान समझा जाना।
Daily we are saying Sakshat Dharijva and Asamasya Sastri that the spiritual master is non different from the Supreme Lord.
हम भी ये स्वीकार करते हैं कि जो गुरु हैं वो भगवान से अभिन्न हैं।
But this is by empowerment, not that he is Bhagavan himself.
परंतु ये जानना जरूरी है कि ये आवेश की वजह से होता है, ऐसा नहीं है कि वो वास्तविकता में ही भगवान बन गए।
There are many examples throughout the Bhagavatam and other Puranas of jivas who were empowered as good as God.
भागवतम और अन्य पुराणों में ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिसमें ऐसा प्रस्तुत होता है कि साधारण जीवों को भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है और वो उतने ही शक्तिशाली हो जाते हैं भगवान जितने।
He was jiva.
परंतु वास्तविकता में वो जीव
है। That is, Prithu Maharaj was jiva, not Vishutava.
जिस प्रकार से पृथु महाराज वो एक जीव है, विष्णु तत्व नहीं।
We had extraordinary powers.
परंतु उनके पास महान महान शक्तियां थीं।
His so-called father, Venu, was a complete and total demon.
उनके जो तथाकथित पिताजी थे वेण, वो पूर्ण रूप से असुर थे।
He was so demoniac, he stopped all the jagnas and pujas done by Brahmins. He persecuted the Brahmins.
वो इतने ज्यादा आसुरी थे कि जितनी भी यज्ञ पूजा इत्यादि ब्राह्मण वर्ग द्वारा होती है भगवान की, उन सबको रोक दिया और यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी वो परेशान करने लग गए थे।
So King Venu's deviation from pure dharma was very severe.
तो जो राजा वेण का भ्रष्टीकरण था वो बहुत ही गहरा था धर्म के सिद्धांतों से।
He said to the Brahmins, "You fools, you think you know the Shastra, you don't know what the scripture says."
वो ब्राह्मणों को ऐसे कहते थे कि तुम मूर्ख धूर्त लोगों, तुम्हें लगता है कि तुम्हें शास्त्रों की ज्ञान है लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता।
You don't say that to learned Brahmins. Really, you don't say that.
कोई भी सभ्य वैदिक सिद्धांतों में जो पारंगत व्यक्ति है वो ब्राह्मणों को इस प्रकार से कटु शब्द नहीं कहेगा।
They were attempting to re-establish pure dharma, but he wouldn't listen anything.
ब्राह्मण तो शुद्ध धर्म की स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वेण कुछ नहीं समझता था, कुछ भी नहीं समझता था।
An extreme offender to the Brahmanas.
और ब्राह्मणों के प्रति वो घोर अपराध करता था।
He said, "You fools, you don't know anything in the scripture. What the conclusion is?"
वो कहता था कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें शास्त्रों का कुछ भी नहीं मालूम।
These Vedas say that all the devas reside within the body of the king. Therefore, you don't know what you're doing. Worship me. Offer all your offerings to me. Forget about the devas. He was hardcore demon.
तो वो इतना आसुरी था कि वो कहता था कि शास्त्रों में बोला गया है कि सारे देवी देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं, तो तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, सारी भेंट मुझे अर्पित करनी चाहिए, ना कि देवी देवताओं को।
When he boldly declared this maha-aparad to the brahmanas, they'd had it.
और उसने जब इसको बहुत ही अच्छे से बोल दिया सारे ब्राह्मणों के सामने बोल्ड रूप से, तो उन्होंने
They said immediately, "Kill him, kill him."
उन्होंने तुरंत ही फरमान जारी कर दिया कि मार डालो, मार डालो।
Just by that utterance, King Venu died.
और केवल उनके इस उच्चारण से राजा वेन की मृत्यु हो गई।
So miraculously, Brihada Maharaj was born from his dead body because the Brahmins knew the technology. We don't. Today, nobody knows that technology, but it was common in Vedic age.
तो जब वेन महाराज की मृत्यु हो गई तो उनके मृत शरीर से बृहद महाराज जी का जन्म होता है, क्योंकि ब्राह्मणों को ये तकनीक मालूम थी कि कैसे मृत शरीर से भी संतान उत्पन्न की जाए। आज के तथाकथित समाज में ये तकनीक हम नहीं जानते, लेकिन वैदिक समाज में ऐसी तकनीकें बहुत ही सामान्य होती थी।
Just like Narada Muni brought King Chetuketu's dead 5-year-old boy back to life.
जिस प्रकार से एक और स्थान पर भागवतम में नारद मुनि चित्रकेतु महाराज के मृत बालक को पुनः जीवित करते हैं।
So Mahaprabhu, Prabhu was saying, everyone should follow the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu and visit all the temples.
तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और सारे मंदिरों को देखना चाहिए।
Prabhupada says that sometimes mundane sahajas support that the gopis visit the temple of Devi. However, the gopis prayed to Katyavani. Katyavani is another name of Durga, to grant them Krishna as their husband.
कभी कभी सांसारिक सहजिये ये मान लेते हैं कि गोपियां कात्यायनी मंदिर में उसी तरह गईं जिस तरह संसारी लोग देवी मंदिर में जाते हैं, किंतु गोपियों ने कात्यायनी से प्रार्थना की कि वे उन्हें पति रूप में श्री कृष्ण प्रदान करें।
In contrast, the non-devotees visit Devi to get material benedictions.
दूसरी ओर संसारी लोग कात्यायनी के मंदिर में भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से जाते हैं।
Oh Devi, please help my son pass his entrance exams to IIT.
हे माता, मेरे पुत्र की सहायता कीजिए कि वो IIT के एंट्रेंस पास कर ले।
Oh Devi, please cure my ailing father. He's got some serious disease. With your mystic power, you please kill his, please cure his illness.
Hey Mata Rani, मेरे पिताजी को बहुत ही गंभीर रोग हो गया है, तो आप अपनी योगिक शक्तियों से उन्हें स्वस्थ कर दीजिए.
Oh Devi, my husband needs a better job.
हे देवी माता, मेरे पति देव को और अच्छा नौकरी दे दीजिए.
You are the supreme mystic, so you kindly make some arrangement. I am your devotee, you please make some arrangement.
आप तो सभी योगिक शक्तियों से संपूर्ण हैं, तो आप कुछ कीजिए.
But this worship by sinful people and even dacoits, of course, worship Kali.
तो जो पापी जन हैं, वो भी काली माता की पूजा करते हैं. यहाँ तक कि जो डकैत हैं, चोर हैं, वो भी पूजा करते हैं.
But they are mudha, fools, asses. That's Krishna's opinion, not mine. I mean, I join with Krishna in that opinion, but he says, "Don't blame me."
तो मूर्ख हैं, गधे हैं, ये कृष्ण का कहना है, मेरा कहना नहीं. हाँ, मैं कृष्ण के से समय सहमत हूँ.
To understand what Kali's actual attitude is towards Lord Vishnu and towards Lord Vishnu's desires of devotees.
तो हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता में काली माता का क्या भाव है भगवान विष्णु और उनके भक्तों के प्रति.
You would have to read Srimad Bhagavatam.
और इसको समझने के लिए हमको भागवतम का अध्ययन करना चाहिए.
The famous king Bharat Maharaj.
प्रसिद्ध राजा भरत महाराज.
He was meditating on a deer at the time of death.
वो अपनी मृत्यु के समय हिरण के ऊपर ध्यान लगा रहे थे.
So he took his next birth as a deer, but with human consciousness.
अगले जन्म में वो एक हिरण के रूप में जन्म लेते हैं.
He was aware that he blew it.
और वो समझ गए कि उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दी.
In his deer body, he used to hang around the sages that were discussing Srimad Bhagavatam, so he got purified.
तो अपनी इस गलती का पश्चाताप करने के लिए वो अपने हिरण के शरीर में महात्माओं के आसपास घूमते थे, जो कि भागवतम की कथा और चर्चा करते थे.
Next birth, he took birth as Jad Bharat.
तो अगले जन्म में उनको एक मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, जिसमें उनका नाम जड़ भरत था.
The son of a Brahmana.
और वो ब्राह्मण के पुत्र थे.
His father was a Brahmin, so he tried to train up his son in Brahmin rituals, Vedas, chanting, mantra, and all these things.
क्योंकि उनके पिताजी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को ब्राह्मण रीति रिवाजों में प्रशिक्षण देने का प्रयास किया.
So, Jad Bharat, there was nothing wrong with him. He was not a mental retard, but he pretended to be.
यद्यपि जड़ भरत बिल्कुल भी मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसका नाटक किया कि वो पागल हैं.
He didn't want to get any training in the shastra, nothing.
वो शास्त्रों में या रीति रिवाजों में किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं चाहते थे.
He was very intelligent.
वो बहुत बुद्धिमान थे.
If I study the Vedas and I'm obedient to my father, then the next thing is he will try to get me married. And that's.
अगर मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया और अपने पिताजी के प्रति मैं आज्ञाकारी बना रहा, तो अगले चीज जो वो करेंगे वो ये होगा कि मेरा विवाह करेंगे.
So he pretended to be deaf and dumb.
तो उन्होंने गूंगा और बहरा होने का नाटक किया.
Finally, his father became so frustrated, he considered his son was useless.
और अंत में उनके पिताजी इतने परेशान हो गए उनसे कि वो समझ गए कि ये जो पुत्र है ये किसी काम का नहीं है.
He gave up.
और उन्होंने अपनी हिम्मत हार ली.
At that time, Jad Bharat left home and just went wandering naked.
तो उस समय जड़ भरत ने घर छोड़ दिया और वो निर्वस्त्र रूप से
long hairs, करते थे. Long hairs, beard, everything, no bathing, nothing. He was playing the role of Avaduta.
अवधूत रूप में वो लंबे लंबे बाल और लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे और बाकी रूप से निर्वस्त्र रूप से वो भ्रमण करते थे.
Avaduta means highly eccentric personality.
अवधूत का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक रूप से बहुत ही बड़ा हुआ व्यक्ति.
So some dacoits captured him and thought he would be a good offering to Goddess Kali.
तो कुछ डकैतों ने उनको पकड़ लिया और सोचा कि वो काली माता के प्रति बहुत अच्छे बलि के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं.
So they captured him. He did not resist.
परंतु जब उन्होंने जड़ भरत को पकड़ा तो जड़ भरत ने किसी प्रकार का विरोध नहीं दिखाया.
They bathed him, washed him up, and offered him nice garments and jewelry.
उन्होंने जड़ भरत को बहुत अच्छे से स्नान कराया और बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से उनको सजाया.
Then they brought him before Goddess Kali and they pulled out their swords and they were about to cut his head off.
और उन्होंने फिर उनको काली माता के सामने रखा और अपनी तलवारें निकाल कर उनका सर काटने ही वाले थे.
As an offering to Kali.
काली माता के प्रति भेंट चढ़ाने के लिए.
Well, what happened next is very important.
तो फिर क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान से.
The goddess Kali was extremely angry that the dacoits or so-called devotees were going to kill a devotee of Lord Vishnu. She was extremely angry.
तो जो काली माता है वो बहुत ज्यादा क्रोधित थी कि जो ये डकैत हैं ये भगवान विष्णु के महान भक्त को मारने वाले हैं, वध करने वाले हैं.
So the deity broke open, the deity broke in half, and the goddess Kali personally jumped out of the deity.
तो इतना असहनीय क्रोध हो गया था उनको कि स्वयं विग्रह में से विग्रह फट गया और काली माता स्वयं प्रकट हो गई.
The illustration is there in Srimad Bhagavatam.
ये विवरण भागवतम में प्रस्तुत है.
She immediately killed all the dacoits with her own weapons. Remember, the goddess Kali is carrying so many weapons.
और उन्होंने तुरंत सारे के सारे डकैतों का वध कर दिया अपने हथियारों से.
So she butchered them all.
सबको काट डाला.
Try to understand that's the relationship between Kali and Vaishnavas. Kali will never trespass on Vaishnavas.
तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि काली माता और वैष्णव के बीच में कैसा संबंध है.
Then her tenants are ghouls. Ghouls.
और उनके जितने भी सेवक जन हैं वो भूत हैं.
She left it to them to drink the blood of the slain dacoits.
और अपने भूतों को उन्होंने उन डकैतों का खून पीने का मौका दे दिया.
She herself is not personally bloodthirsty.
वो व्यक्तिगत रूप से खून नहीं पीना चाह रही थी.
So we honor the devas and we take shelter of Krishna. That's our program given by Mahaprabhu.
तो हम सभी देवताओं का आदर करते हैं लेकिन भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है.
Any question?
कोई प्रश्न है?
Yes. Can you hear him? Just take his question. We're out of time. No. Just take his question. Okay, you have to keep it short. What's the short version?
He's asking that as Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead, while visiting different temples of demigods, he was offering his obeisances. So if the demigods did not feel very much offended or very much embarrassed that Supreme Lord is offering obeisances to us, so how did they handle it?
Maybe they were embarrassed.
तो प्रश्न है कि प्रभु जी कह रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर उन्होंने प्रणाम अर्पित किए तो जो देवी देवता हैं वो शर्मिंदा नहीं हो गए कि भगवान स्वयं जिनको हमें प्रणाम करना चाहिए वो हमें प्रणाम कर रहे हैं. तो महाराज उत्तर दे रहे हैं कि हो सकता है कि उनको शर्म आ रही हो.
They also knew that he was playing the role of acharya.
परंतु वो साथ में ये भी जानते थे कि वे आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं.
He was the perfect sannyasi externally, the perfect guru.
और वो बिल्कुल आदर्श सन्यासी थे और आदर्श गुरु थे.
As such, he demonstrated the proper etiquette of offering respects to the devas. Vaishnavas do not reject the devas. We honor them, but we worship Lord Vishnu.
तो उन्होंने ये अपने उदाहरण से स्थापित किया कि वैष्णव देवी देवताओं का भी आदर करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना और उनका आश्रय लेते हैं.
Okay, we'll stop there.
तो यहाँ पर हम विराम
देंगे. जय गुरु श्री बाबा की जय. करांचरा श्री चैतन्य चरितमृति गाय गौर प्रेमानंदे.
परम पूजनीय भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज की.